दूसरी बात ये पूछी है कि ध्यान के विषय में कि ध्यान जो है परमात्मा का आंखों से किया जाता है, मेरी मन समझ है, और आपका जो ध्यान मन से होता है तो मन से ध्यान किस प्रकार से होता है, भगवान का ध्यान मन से किस प्रकार से होता है, वो हमारे को समझाना चाहिए। ये तो बहुत सीधी बात है, आंखों से भी ध्यान होता है, माने अपना जो इष्ट देव है भगवान शिव या विष्णु, भगवान श्री राम या कृष्ण, उनका जो फोटो जो अपने मन को आकर्षण करने वाला है, ऐसे भगवान के फोटो को अपने सामने रखे थे और चरणों से लेकर मस्तक तक उसको अच्छे प्रकार से देख करके थे और उसके मुखार बिंद के ऊपर अपने नेत्रों को खोल करके लगा देना, नेत्रों से नेत्र मिलाकर वहां ध्यान लगा देना, या भगवान के मुखार बिंद के ऊपर चेहरे के ऊपर अपना ध्यान जमा देना श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक, तो ये भी होता है। ये आरंभ की बात, शुरू की बात। फिर आगे जाकर के जब वो भाव हृदय में बैठ जाता है तो नेत्रों को बंद कर लेने पर उसी प्रकार का भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। प्रथम तो इस प्रकार का फोटो के रूप में देखता है, फिर साथ साथ चेतन के रूप में माने क्रिया करता हुआ भगवान के स्वरूप को देखता है ध्यान से, और उसके बाद में आंख खोल देवे और फोटो भी सन्मुख ली रहे तो भी उसके मन का हृदय का जो भाव, उस भाव के अनुसार भगवान उसको अपने सन्मुख दिखते हैं, नेत्रों से नहीं, वो मन से, और बहुत अधिक प्रेम होता है तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का ध्यान होना और सपने के बीच के वहां उनका दर्शन होना ये तो साधारण बात है, किंतु साक्षात भगवान का दर्शन होना ये बड़े सौभाग्य की बात। आंख खोल करके मूर्ति के भगवान का ध्यान करना तो मामूली की बात है, इससे वो अरी मैं थोड़ी कि नेत्र बंद करके के वैसा का वैसा मन से भगवान का ध्यान करना, और उससे भी वो कठिन है जो सपने में भगवान का साक्षात दर्शन होगा, और उससे भी वो कठिन है कि जो साक्षात भगवान का एकदम प्रत्यक्ष रूप का मिल जाना, जैसे मैं और आप परस्पर में भी मिल रहे हैं। स्वर्ग में प्रसन्न ये चलता था कि वक्ता तो हम लोग बहुत अधिक हैं और समय कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वक्त सबको देना चाहिए। व्याख्यान दाताओं का तो व्याख्यान देने का शौक कहो, इज्जत कहो, आदत कहो, और सुनने वालों का भी चाहे व्यसन कहो चाहे आदत कहो शौक कहो, किंतु वास्तव के वहां जो सत्संग है वो दूसरा ही, वो यह है कि सुनने के वक्त में जो बात सुनी जाती है वो हृदय के बीच में जो कि तुम धारण हो जाती है, सुनने वाला यदि श्रद्धालु हो धारण होकर उनके अनुसार क्रिया भी आरंभ हो जाती है, वैसे वो करने लग जाता है तो फिर विशेष समय नहीं लगता, दिनों में ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और बिना परमात्मा की प्राप्ति के वो जी नहीं सकता।
उनको ये विश्वास है कि जो बात कही गई थी कि 16 में सत्य है, शास्त्र प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है,
युक्ति का प्रमाण जहाँ कम श्रद्धा है वहाँ दिया जाता है, जहाँ विशेष श्रद्धा होती है वहाँ युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हाँ तो महापुरुषों का वतनी प्रमाण है, महापुरुष है उनका दूसरा नाम आपद पुरुष है। महर्षि पतंजलि ने प्रमाण के विषय में 3 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष अनुमान आगमानी प्रमाणानी, ये सूत्र है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और एक अनुमान प्रमाण, अनुमान माने युक्ति प्रमाण, अरे एक आगम प्रमाण, आगम माने शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, महापुरुषों का जो वचन है वही शास्त्र, तो महापुरुषों का जो वचन है एक तो यह प्रमाण, जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण है इसी प्रकार से महापुरुषों के वचनों को श्रद्धालु लोग प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं और आंखों से सबको देखते हैं कि ये सब लोग बैठे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण यह है कि लोग मरते हैं, इससे अनुमान होता है कि मैं भी एक दिन मरूंगा, कोई बात निश्चित है। और भी शब्द की इसी माँ होते प्रमाण है, कहीं पहाड़ के वहां धुआं निकलता है तो धुआं से ये अनुमान किया जाता है कि यहाँ आग लग गई, धुआं है तो वहां आग निश्चित, ये अनुमान प्रमाण है। धुएं को देख करके आग का निश्चय कर। और शब्द प्रमाण है, वही आगम प्रमाण है कि देखो वेदों में ये बात लिखी है, स्मृतियों में ये बात लिखी है, महापुरुष ऐसा कहते हैं। तो महापुरुषों के वचनों के विषय में ये बात है कि उनके वचनों को जो प्रत्यक्ष के मापक समझता है वो श्रद्धा है, और प्रत्यक्ष से भी बढ़ करके समझता है वो परम श्रद्धा है। शास्त्रों के वहां एक बात लिखी है और महापुरुष उससे ऐसी प्रतीति होती है माने विरुद्ध कहता है, तो महापुरुषों के वचनों को अधिक आदर देता है शास्त्री की अपेक्षा भी। शास्त्री की अपेक्षा ही नहीं, युक्ति की अपेक्षा भी उसको अधिक महत्व देता है, प्रत्यक्ष से भी उसका अधिक आदर करता है, तो वो परम श्रद्धालु है। वास्तु के बीच में जो बढ़ता है उसको खुद एक प्रकार से उस बात का पालन करना चाहिए, फिर उसका उपदेश देना चाहिए, तभी उसका असर होता है। और वक्ता स्वयं पालन नहीं करता और केवल लोगों के लिए उपदेश ही देता रहता है तो उसका कोई विशेष असर नहीं होता। बहुत दफे हम लोग बातों को सुनते हैं और वो काम नहीं हो जाती है, श्रद्धा की कमी है, और बोलने वाले जो व्याख्यान जाता है उनमें सामर्थ्य की कमी है। वक्ता की तो ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि सुनने वाला आकर सुनने के लिए बैठ गया और उसमें कोई प्रकार की कमी है तो वो तो कमजोर ही, वो तो अज्ञानी है। न्याय तो ये कहता है, किंतु एक प्रकार से हम लोग तो इस बात को ख्याल नहीं करते कि भगवान की चर्चा होनी चाहिए। वास्तव के बीच के वहां व्याख्यान देने की उन्हें योग्यता है और उन्हें अपना अधिकार है, ऐसा समझ करके भगवान की चर्चा परस्पर करना ये लाभदायक है। इस दृष्टि से यदि एक प्रकार से वक्ता बोले तो विशेष दोष नहीं है, किंतु वक्ता अपने को महात्मा समझे, योग समझे, श्रद्धेय समझे और फिर व्याख्यान देवर उसका विशेष असर नहीं हुए तो वक्ता के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। आजकल ऐसा देखने में कमी आता है कि व्याख्यान दे दिया और उसका ऐसा असर हो गया कि वो बस एकदम तैयार हो गया।